नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 18 जनवरी 2019 के इस बुलेटिन में शामिल हैं। दुनिया में बढ़ती असमानता और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक और तेज प्रयासों की जरूरत, कहा यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सामुदायिक हिंसा में 800 से ज्यादा लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों के समूह G77 की बागडोर अब फिलिस्तीन के हाथों में। और अफगानिस्तान में चरमपंथ से निपटने और शांति संदेश के प्रसार के लिए लिया जा रहा है धार्मिक नेताओं का सहारा। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि अगर बढ़ती असमानता और अन्य चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई में पीछे नहीं छूटना है तो फिर अपने प्रयासों में जबरदस्त तेजी लाने की आवश्यकता है। यूएन महासभा के अनौपचारिक सत्र के दौरान अपने संबोधन में महासचिव ने 2018 में दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने में मिली सफलता का जिक्र किया, लेकिन माना कि 2019 में और भी ज्यादा हासिल किए जाने की जरूरत है क्योंकि दुनिया चुनौतियों से घिरी है।
In this fast changing world, standing still means falling further behind. And on three key 21st century challenges, we need to dramatically accelerate our efforts in 2019.
तेजी से बदलती दुनिया में रुक जाने का मतलब पीछे छूट जाना होता है। इसलिए 21वीं शताब्दियों की चुनौतियों से निपटने के लिए 2019 में हमें अपने प्रयासों में नाटकीय तेजी लाने की आवश्यकता है। महासचिव गुटेरेश, इस साल जिन 5 मुख्य विषयों पर गुटेरेश ने ध्यान केंद्रित करने की बात कही है वे हैं शांति स्थापना के लिए कूटनीतिक प्रयास, महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई, टिकाऊ विकास लक्ष्यों की ओर तेज प्रगति, नई तकनीकों का सकारात्मक और बेहतर ढंग से इस्तेमाल और विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र मूल्यों का प्रसार। 2018 में मिली सफलताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने विशेष रूप से यमन में शांति के लिए प्रगति, इथियोपिया और एरिट्रिया में समझौते, कैटोविच जलवायु सम्मेलन में पेरिस समझौते के तहत जलवायु कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने, प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए समझौतों और यूएन में सुधार प्रक्रिया का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल का अनुभव हमें दिखाता है कि जब हम साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है।
And what guides us is a set of values, the universal values of the United Nations Charter that binds us together. Peace, justice, human dignity, tolerance and solidarity. Today those values are under attack around the globe.
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सार्वभौमिक मूल्य हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, शांति, न्याय, मानवीय गरिमा, सहिष्णुता और एकजुटता। लेकिन आज ये मूल्य खतरे में पड़ गए हैं। ये थे महासचिव गुटेरेश। उनके मुताबिक तमाम दिक्कतों और चुनौतियों के चलते राजनीतिक ढांचे में लोगों का भरोसा कम हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के महत्व पर भी उंगली उठ रही है, जिससे संयुक्त राष्ट्र भी अछूता नहीं है। लेकिन यूएन की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि असुरक्षा भरे माहौल में जब लोग भविष्य के प्रति अनिश्चितता से घिरे हों, जब कट्टरपंथी और संकीर्ण सोच वाली ताकतें उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करें, ऐसे समय में यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सफलता साझा मूल्यों के लिए हमारी वचनबद्धता में ही निहित है। हाल ही में यूएन महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोजा ने इस साल के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा था कि दुनिया में बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में नई ऊर्जा का संचार किए जाने की आवश्यकता है। एस्पिनोजा की 6 प्राथमिकताओं में बहुपक्षवाद आधारित व्यवस्था को मजबूत करना, प्रवासियों और शरणार्थियों के मुद्दे पर हुए समझौतों का प्रभावी अमलीकरण, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर, पर्यावरण संरक्षण और विकलांगों के अधिकार सुनिश्चित करना शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को विश्वसनीय रिपोर्टें मिली हैं जिनके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सामुदायिक हिंसा में पिछले महीने 800 से ज्यादा लोग मारे गए। बनूनू और बातेंदी समुदाय के बीच 4 गांवों में हिंसा हुई, जिसके बाद अधिकतर लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में गांव छोड़कर चले गए हैं। पिछले महीने 16 और 18 दिसंबर के दौरान यह हिंसा हुई और आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है। हिंसा में सैकड़ों घरों, इमारतों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को नुकसान पहुँचने की खबर है। 16,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने कहा कि स्तब्ध कर देने वाली हिंसा की जल्द से जल्द जांच कराए जाने और दोषियों को सजा दिलाए जाने की जरूरत है। 30 दिसंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान युम्बी इलाके में इसी हिंसा के चलते टाल दिया गया था। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार फेलिक्स तशिसेकेदी की जीत हुई है, लेकिन अन्य विपक्षी उम्मीदवार मार्टिन फयालू ने भी अपनी जीत का दावा किया है। फयालू ने कांगो में संवैधानिक मामलों की अदालत में अपील दायर कर रखी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने G77 देशों के समूह की बागडोर फलस्तीन द्वारा संभाले जाने को ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए बधाई दी है। न्यूयॉर्क में एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि फलस्तीन और उसके नागरिकों को दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करने का प्रत्यक्ष अनुभव है और इतने देशों के महत्वपूर्ण समूह का नेतृत्व करने के लिए फलस्तीन तैयार है।
Palestine and its citizens have first-hand experience of among the most challenging and dramatic global issues we face. You are well placed to take up the chairmanship of this important group of countries.
यूएन में 134 विकासशील देशों के समूह G77 और चीन की अध्यक्षता इससे पहले मिस्र के पास थी। G77 के अध्यक्ष के लिए फलस्तीन को चुनने का फैसला पिछले साल सितंबर में G77 ग्रुप के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया गया था। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भरोसा दिलाया कि वे अध्यक्षता का उपयोग बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने और यूएन साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए करेंगे। विविधता में एकता के सिद्धांत पर चलते हुए उनका ध्यान सबसे कम विकसित देशों, मध्य आय वाले देशों और लघु द्वीपीय विकासशील देशों या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लोगों पर होगा। उनकी कोशिश होगी कि कोई भी पीछे न छूटने पाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन के बंदरगाह शहर हुदायदा में नाजुक संघर्ष विराम की निगरानी के लिए 75 पर्यवेक्षकों को तैनात किए जाने के पक्ष में वोट किया है। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। पिछले महीने संघर्ष विराम होने से वहां फंसे और भुखमरी के कगार पर खड़े लाखों लोगों को अब मदद की उम्मीद बंधी है। इस मिशन को हुदायदा समझौते के समर्थन में यूएन मिशन का नाम दिया गया है। यमन में 4 साल से सरकारी सुरक्षा बलों और हूती लड़ाकों के बीच चली आ रही लड़ाई को सुलझाने के लिए स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में प्रयास हुए थे और संघर्ष विराम के लिए रजामंदी भी हुई, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप भी लगा रहे हैं। इससे पहले विश्व खाद्य कार्यक्रम को हिंसा प्रभावित परिवारों तक राशन और अन्य राहत सामग्री पहुंचाने में सफलता मिल गई। पिछले साल जुलाई में यूएन एजेंसी के एक ट्रक के लड़ाई की चपेट में आने के बाद 6 महीनों में ये पहली बार है जब मानवीय राहत पहुंचाई जा रही है और यह आंशिक संघर्ष विराम के चलते ही संभव हो पाया है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी इलाके में चरमपंथी गतिविधियों और हिंसा से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र धार्मिक नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्थानीय समुदायों में सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले और प्रभावशाली धार्मिक नेताओं और उलेमाओं को शांति स्थापना के एजेंट के तौर पर पेश करते हुए लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि वे शांति प्रयासों का हिस्सा बने। कुंदूज और उसके आसपास के तनावग्रस्त और गड़बड़ी वाले इलाकों में शांति, मेल मिलाप और आपसी समन्वय को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कुंदूज में हज और धार्मिक मामलों के अधिकारी ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन यूनामा को बताया कि वे अपने संदेश को फैलाने के लिए रेडियो, टेलीविजन और मस्जिदों का सहारा ले रहे हैं। इन प्रयासों को भविष्य में भी जारी रखे जाने की योजना है। पिछले साल कुंदूज में यूनामा के क्षेत्रीय कार्यालय ने शांति निर्माण के लिए शुरू हुई इस पहल को अपना समर्थन दिया था। ये संदेश 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।